पीरी छात्रों नमस्कार। तो बात चल रही थी क्रिया की, जैसा कि आपने अध्ययन किया कि क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है करना। संस्कृत भाषा के में क्रिया रूप को धातु कहते हैं और धातु के पीछे न लगा देने से हिंदी में क्रिया पद बन जाते हैं। फिर परिभाषा, जिसमें आपने यही पढ़ा कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। उसके बाद में क्रिया के भेद, और क्रिया के भेद तीन आधार पर किए जा सकते हैं, कर्म के आधार पर, संरचना या प्रयोग के आधार पर और काल के आधार। जिसमें कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यही क्रिया है वो महत्वपूर्ण है। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसमें क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर न पड़कर सीधे कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। उसके बाद में आपने कल पढ़ा था कि संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया है वो पांच प्रकार की होती है, जिसमें संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। आज जो क्रिया के भेद का जो आधार है वो है काल के आधार पर क्रिया के भेद। आज का यही विषय वस्तु है। तो काल के आधार पर क्रिया के भेद, यानी जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के तीन भेद हैं। काल का अर्थ होता है समय, जिसमें नंबर एक भूतकालिक क्रिया, नंबर दो वर्तमानकालिक क्रिया और नंबर तीन भविष्यकालिक क्रिया। अर्थात जैसे अंग्रेजी में आप टेंस पढ़ते हैं तो उसी प्रकार हिंदी में भी काल के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की होती हैं। भूतकालिक अर्थात बीता हुआ समय, यानी समय जो बीत गया है क्रिया से उस समय की जानकारी होती है तो उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता तो वह क्रिया भूतकालिक क्रिया कहलाती है। ध्यान से वापस आप परिभाषा देख सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का ज्ञान हो या बोध हो तो उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह विदेश चला गया, ये एक वाक्य है, वह विदेश चला गया यानी अभी नहीं जा रहा है या आगे नहीं जाएगा, बल्कि वो बीते समय के बारे में बता रहा है, यानी आज से पहले वो विदेश चला गया। दूसरा वाक्य, जैसे उसने बहुत सुंदर गीत गाया, अर्थात वो गीत गा चुका है या गा चुकी है। तो ऐसी स्थिति में यानी बीते समय का ज्ञान जिस क्रिया के माध्यम से होता है तो वो भूतकालिक क्रिया कहलाती है। दूसरा जो काल के आधार पर क्रिया का भेद है वो है वर्तमानकालिक क्रिया। वर्तमान ये जो चल रहा है समय उसे वर्तमान कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिसे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता हो तो उसे वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता हॉकी खेल रही है, यानी वर्तमान में कार्य कर रही है, तो सीता हॉकी खेल रही है तो ये वाक्य वर्तमानकालिक क्रिया का है। विमल पुस्तक पढ़ रहा है, यानी वर्तमान में कार्य कर रहा है, वर्तमान में कार्य संपन्न हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस वाक्य में वर्तमानकालिक क्रिया होगी। और काल के आधार पर क्रिया का जो तीसरा भेद है वो है भविष्यत्कालिक क्रिया, यानी भविष्यत का मतलब है आने वाले समय में कार्य का संपन्न होना। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता हो तो वह क्रिया भविष्यत्कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, यानी जब आने वाले समय में छुट्टियां होगी ग्रीष्मकालीन की, उस समय गार्गी है वो कश्मीर की यात्रा करेगी। तो यानी क्रिया आने वाले समय के बारे में जानकारी दे रही है, तो ऐसी स्थिति में इस वाक्य में भविष्यत्कालिक क्रिया होगी। दिनेश निमंत्रण प्रतियोगिता में भाग लेगा, अभी लिया नहीं है, आने वाले समय में वो निमंत्रण प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो इसका मतलब है कि इस वाक्य में भविष्यत्कालिक क्रिया है। तो इस प्रकार ये क्रिया का जो बिंदु है वो समाप्त होता है। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि दो तीन प्रश्न बनते हैं क्रिया की परिभाषा या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, या वाक्य दिया हुआ होगा और उसमें कौन सी क्रिया है उसे परिभाषित करना है, तो ज़्यादातर आपको कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जिसमें सकर्मक और अकर्मक इन क्रियाओं की परिभाषा और इनके उदाहरण याद करने हैं। और इसी के साथ आज का ये बिंदु समाप्त। धन्यवाद।